नमस्कार भारत, आज है 26 अगस्त दिन शनिवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। बलात्कार मामले में गुरमीत राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद हुई हिंसा में 29 लोगों की मौत, हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन?
बहुत भारी तादाद में 13 समर्थक वहाँ पे इकट्ठे, और पंचकुला की जो लोकेशन है वो इस तरह की है कि चारों तरफ से खुला हुआ एरिया है, कोई ऐसा एरिया नहीं है कि जिसको कांटेदार तार लगा के कोई प्रॉपर उसको रेगुलेट किया जा सके।
बिहार की प्रलयंकारी बाढ़ में अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत। हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान से भारत आए हिंदुओं को आती है याद अपने जड़ों की।
कैसे ही मैंने कदम रखा, वही हवा खुशबू मिट्टी की और वही फीलिंग जो मैं 1942 में मुझे हुई।
होंगी अन्य खबरें भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार विस्तार से।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। बाबा गुरमीत राम रहीम को बलात्कार का दोषी करार दिए जाने के बाद हुई हिंसा में 29 लोग मारे गए हैं और दर्जनों घायल हुए हैं। गुरमीत राम रहीम को रोहतक की जेल ले जाया गया है। अब उन्हें 28 अगस्त को अदालत में पेश किया जाएगा, जब उन्हें सजा सुनाई जाएगी। हालात काबू करने के लिए हरियाणा और पंजाब के कई जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है। सेना की मदद भी ली जा रही है। तीव्र समुद्री चक्रवात हार्वी करीब 215 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अमेरिका के टेक्सास प्रांत की ओर बढ़ रहा है। ये कैटेगरी 4 का चक्रवात है। अमेरिका के राष्ट्रीय चक्रवात केंद्र के मुताबिक ये चक्रवात तटीय शहर कॉर्पस क्रिस्टी से करीब 70 किलोमीटर दूर है। तूफान के कारण तटीय इलाकों में अभी से पेड़ गिर रहे हैं और भारी बारिश हो रही है। हजारों नागरिक अपने घरों पर ताले लगाकर सुरक्षित इलाकों की ओर निकल गए हैं। राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक ये चक्रवात कई दिनों तक तबाही मचा सकता है। टेक्सास के शहरों में भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। प्रांतीय गवर्नर ने जानलेवा बाढ़ आने का खतरा भी जाहिर किया है। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट कहते हैं, ये वो चक्रवात है जो कई चक्रवातों से ज्यादा खतरनाक साबित होगा। हमें न सिर्फ तेज हवाओं का सामना करना है जो चक्रवात के साथ आती हैं, बल्कि हमें टेक्सास के कई इलाकों में बेहद तेज और भारी बारिश का भी सामना करना है। अमरीकी सेना का कहना है कि उत्तर कोरिया ने कम दूरी की 3 मिसाइल लॉन्च की हैं। एक बयान में अमरीकी सेना की पैसिफिक कमान ने कहा है कि पहली और तीसरी मिसाइल उड़ान के दौरान नाकाम रही और दूसरी मिसाइल में उड़ान भरते ही धमाका हो गया। अमेरिका ने कहा है कि इन मिसाइल लॉन्च से प्रशांत महासागर स्थित अमेरिकी क्षेत्र गुआम द्वीप को कोई खतरा नहीं है। बीते महीने उत्तर कोरिया ने गुआम पर हमला करने की धमकी दी थी। वहीं दक्षिण कोरियाई सेना का कहना है कि उसने उत्तर कोरिया के पूर्वी तट पर कई प्रोजेक्टाइल देखे हैं। हाल के महीनों में उत्तर कोरिया ने अपना मिसाइल कार्यक्रम तेज किया है। बीते महीने उत्तर कोरिया ने अंतर महाद्वीपीय मिसाइल भी लॉन्च की थी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा मंत्रालय को सेना में ट्रांसजेंडर सैनिकों की भर्ती न करने के आदेश दिए हैं। बीते महीने ट्रंप ने एक ट्वीट में अपने इस अप्रत्याशित कदम के संकेत दिए थे। रक्षा मंत्री जिम मैटिस को लिखे एक मेमो में ट्रंप ने कहा है कि पेंटागन बीते साल जून तक लागू प्रतिबंध को फिर से लागू करे। सेना में मौजूद ट्रांसजेंडर सैनिकों पर अब रक्षा मंत्रालय फैसला लेगा। ट्रंप ने सैनिकों के सेक्स बदलने की सर्जरी कराने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस माडुरो ने कहा है कि अमेरिका के लगाए गए नए आर्थिक प्रतिबंधों के बाद वेनेजुएला से अमेरिका के लिए तेल निर्यात रुक जाएगा। शुक्रवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव आदेश पारित कर वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी PDVSA पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे और राष्ट्रपति माडुरो को तानाशाह घोषित किया था। अब PDVSA अमरीकी नागरिकों और कंपनियों को अपने बॉन्ड नहीं बेच सकेगी। माडुरो का कहना है कि इन नए प्रतिबंधों से अमरीकी कंपनियों पर असर पड़ेगा और टेक्सास प्रांत में वेनेजुएला की तेल रिफाइनरी भी बंद हो जाएगी। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में सैनिकों पर चाकू से हमला करने वाले हमलावर को गोली मार दी गई है। सोमाली मूल के हमलावर ने हमला करने से पहले अल्लाह अकबर का नारा लगाया था। अभियोजकों का कहना है कि वो घटना को चरमपंथी वारदात मानकर जांच कर रहे हैं। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। जैसा आपने अभी अभी समाचारों में सुना, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रेप के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में हालात खराब हो गए हैं। डेरा समर्थकों ने पंचकुला में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की है, और इस हिंसा में अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं। इसकी जानकारी पंचकुला के पुलिस कमिश्नर SK चावला ने BBC संवाददाता कुलदीप मिश्र को दी।
अभी तक जी जो लास्ट इनपुट आई है जी, उसके अंदर देयर आर 28 पीपल हु आर किल्ड, आउट ऑफ व्हिच द हेल्थ अथॉरिटीज हैव टोल्ड अस दैट 6 आर किल्ड बिकॉज ऑफ फायर इंजरी, रिमेनिंग आर अदर रीजंस व्हिच दे आर वर्किंग आउट एंड वी विल हैव अ क्लियर कट पिक्चर आफ्टर सम टाइम।
क्या ये बता पाएंगे अभी कि पुलिस की तरफ से भी कोई कैजुअलिटीज हुई हैं या मरने वालों में से?
पुलिस की तरफ से भी कैजुअलिटी अभी तक रिपोर्टेड नहीं है, देयर आर सीरियस इंजरीज टू पुलिसमैन दैट इज देयर।
और अभी की सिचुएशन कैसी है सर?
द सिचुएशन इज परफेक्टली पीसफुल, ऑल दीज दंगाइज हु हैड एंटर्ड इनटू द सिटी एंड ट्राइड टू क्रिएट रकस, दे हैव बीन क्लीन्ड ऑफ इन अ वेरी स्विफ्ट ऑपरेशन एंड द होल सिटी इज ओपन, द ट्रैफिक इज रनिंग स्मूथली।
ये थे पंचकुला के पुलिस कमिश्नर AS चावला। हरियाणा के कई शहरों में धारा 144 लागू है और डेरा के मुख्यालय सिरसा में सेना ने फ्लैग मार्च किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि वहां हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई है।
कुछ लोगों की जाने भी चली गई, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया है, वाहन भी जलाए गए हैं, खास करके मीडिया के जो इवेंट्स को भी नुकसान पहुंचाया जो मैंने देखा है। कानून को जो हाथ में लिया है, इन लोगों ने जो भी कुछ किया है पूरी सजा मिलेगी। बहुत से लोगों की पहचान भी हो गई है, उसमें कुछ लोगों ने जो गोलियां चलाई हैं वो भी पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
ये थे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। गुरमीत राम रहीम को गिरफ्तारी के बाद रोहतक की सुनारिया जेल में ले जाया गया है। पंचकुला की हिंसा के बाद हरियाणा से सटी राजधानी दिल्ली और 5 राज्यों में कई जगहों पर एहतियातन धारा 144 लगा दी गई है। कई जगह छिटपुट हिंसा और आगजनी की घटनाएं भी हुई हैं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह किर्गिस्तान की अपनी यात्रा बीच में छोड़ भारत लौट आए हैं, और उन्होंने हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों और दिल्ली के उपराज्यपाल से हालात पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, और वो बहुत बारीकी से हालात पर नजर रख रहे हैं। ताजा हालात की जानकारी के लिए सीधे चलते हैं पंचकुला अपने सहयोगी रविंदर सिंह रॉबिन के पास। रविंदर, पुलिस कह रही है कि हालात नियंत्रण में हैं और शाम 7 बजे के बाद कोई ऐसी घटना नहीं हुई है, आप वहाँ क्या देख पा रहे हैं?
इस वक्त तो कारण यह है कि इस वक्त जो शांति नजर आ रही है वो है कि जब ये वायलेंस हो चुकी थी, कल हुड़दंग हो गया और लोग मर गए, उसके बाद जो टेक ओवर किया पैरामिलिट्री फोर्सेस ने और लोगों को घरों से नहीं निकलने दिया, एक तो उस तरह का माहौल है। लेकिन जो कल हुआ उसको लेके उस पैनिक बहुत है, ना सिर्फ पंचकुला में, पूरे हरियाणा में, चंडीगढ़ में और पंजाब में, राजस्थान के भी एक दो एरिया में। जो चंडीगढ़ बिल्कुल डिजर्टेड, खाली सड़कें नजर आ रही हैं, पंचकुला में भी इसी तरह के हालात हैं। हाँ, जो अस्पताल के आसपास थोड़ा सा उन लोगों का जमावड़ है जिनके कोई लोग इंजर्ड हैं या मर गए हैं।
रविंदर, पुलिस देर से हरकत में आई, तब हालात बेकाबू हो गए थे, आपको क्या लगता है आज हालात काबू में रहेंगे या हिंसा फिर से भड़क सकती है?
देखिए, जो कल हुआ उसमें आज CM हरियाणा जो है खट्टर, ये तो कह रहे हैं कि एंटी सोशल एलिमेंट जो है वो डेरा फॉलोअर्स के बीच में मिक्स हो गए थे, लेकिन कहीं पे भी वो ये गलती नहीं मान रहे हैं कि वो डेरा वाले फॉलोअर्स को, उन अनुयायियों को वहां तक आने क्यों दिया गया। इस बात पे वो अपने पुलिस प्रशासन को और एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं पे भी दोषी नहीं मान रहे हैं। हालांकि सिर्फ जो पंचकुला के DCP हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है कि वो धारा 144 लगवा नहीं पाए, लेकिन पूरे हरियाणा और पंजाब में इस तरह के हालात पैदा हुए। अब दोबारा से हिंसा ना भड़के उसके लिए इंटरवेन सेंटर ने भी कर दिया है, और इवन हाई कोर्ट ने तो बहुत सख्त लिहाज पे, सख्त शब्दों में ये कह दिया है कि अगर ये नहीं कर सकते लोगों की सुरक्षा, तो क्या हम सेंटर से फौज मंगवाएं। तो उसको लेके इस वक्त लगातार फ्लैग मार्चेस हो रहे हैं
जी,
और पुलिस के जो आम लोगों को सुरक्षा की बात, उनको आश्वासन दिया जा रहा है कि यहाँ पे इस तरह की वारदात दोबारा नहीं होगी।
और अब सीधे चलते हैं डेरा सच्चा सौदा के मुख्यालय सिरसा में, जहां मौजूद हैं हमारे सहयोगी प्रभु दयाल। प्रभु दयाल, सिरसा में एक व्यक्ति की मौत हुई है कल शाम से, अब तक वहां आपने क्या कुछ देखा है?
सिरसा में अभी स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन शांति भी है। मिलिट्री ने अभी अपना मोर्चा संभाला हुआ है। डेरा के साथ लगते गांव के अंदर कर्फ्यू अभी जारी है, जिसके अंदर बाजेका शामिल है, बेगू शामिल है और नेजिया शामिल है। सिरसा के अंदर भी कर्फ्यू है, लेकिन सिरसा के अंदर मरने वालों की संख्या जो है एक नहीं वो दो हो गई है। और सूत्रों से ये भी पता चला है कि कुछ लोग जो इंजर्ड है जिनको डेरे वाले अपने अस्पताल के अंदर लेके गए हैं, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है।
प्रभुदयाल, सेना की क्या भूमिका है सिरसा में?
सेना के आने के बाद ही सिरसा के अंदर शांति बन पाई है। सेना ने अपना पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। सेना ने फ्लैग मार्च करने के बाद ही जो स्थिति है वो शांति बन पाई है सिरसा के अंदर। सेना अपनी भूमिका जो है वो अच्छी तरह निभा रही है, और उसके बाद जो है पूरे के पूरे सिरसा के अंदर जो शांति बन पाई है।
प्रभुदयाल और रविंदर सिंह रॉबिन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हालात पर नजर बनाए रखिए, शाम के कार्यक्रम में हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। आगे बढ़ते हैं। गुरमीत राम रहीम पर यौन शोषण के आरोप में अदालत का फैसला कल आना था, और इससे पहले ही सिरसा और पंचकुला में उनके समर्थकों का तांता लगना शुरू हो गया था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार और प्रशासन को इन्हें हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन जिस तरह से हिंसा भड़की उसे देखकर यही लगता है कि अदालत के निर्देश के मद्देनजर तैयारी शायद नहीं की गई थी। इस बारे में हमारी सहयोगी हरिता कांडपाल ने हरियाणा के गृह विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव राम निवास से बात की और पूछा कि अदालत के निर्देश के बावजूद वहां कहां चूक हो गई।
देखिए, ऐसा है कि एक ये बहुत बड़ा इवेंट जिसके बारे में लोगों की इमोशनल जो भावना उनसे इतनी जुड़ी हुई, तो बहुत बड़ा एक ये पोटेंशियल इवेंट था जिसके बारे में प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी थी। और ये जिस वक्त वर्डिक्ट आया तो उसके बाद जितने भी उनके फॉलोअर्स थे उनका बहुत जबरदस्त रिएक्शन हुआ, लेकिन 4 घंटे के दौरान ही पुलिस ने पूरी तरह से स्थिति पे कंट्रोल कर लिया, और 7 बजे के बाद पूरे शहर में एक भी दंगाई उपस्थित नहीं है।
जी, लेकिन इसके पहले भी तो हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार और पुलिस प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करे कि इस तरह की घटनाएं ना हो और डेरा के लोगों को वापस भेजा जाए, तब सरकार क्यों नहीं जागी थी?
देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एक बड़ी सेंसिटिव और डायनेमिक सिचुएशन है। बहुत भारी तादाद में डेरा समर्थक वहाँ पे इकट्ठे, और पंचकुला की जो लोकेशन है वो इस तरह की है कि चारों तरफ से खुला हुआ एरिया है, उसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा एरिया नहीं है कि जिसको कांटेदार तार लगा के कोई प्रॉपर उसको रेगुलेट किया जा सके। तो लोग पैदल इधर से उधर से दाएं बाएं रस्तों से इवन घग्गर रिवर को क्रॉस करके इस तरह से लोग चारों तरफ से आए, सड़कों पे नाके लगा के व्हीकल्स को तो जाहिर इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन ये जो पैदल दाएं बाएं इधर उधर से लोग आए तो इनको रोकना, अनलेस पूरे ही सिटी को 100% सील करके और फिर आम पब्लिक के आने जाने को भी बंद किया जाए, अगर वो स्थिति हो तो शायद उनको रोका जाना संभव था।
ये थे हरियाणा के गृह विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव राम निवास। ये कोई पहला मौका नहीं है जब हरियाणा में भीड़ ने हिंसा और तोड़फोड़ की है। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान कई लोगों की जान गई थी और हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति तबाह हुई थी। इसके अलावा एक और कथित धार्मिक बाबा रामपाल के समर्थकों ने उनकी गिरफ्तारी के बाद जमकर हंगामा किया था, जिसमें करीब 6 लोगों की मौत हो गई थी। क्यों हरियाणा में कानून व्यवस्था इस तरह के मौकों पर फेल हो जाती है, या फिर इसके पीछे कोई और कारण भी हैं? हरिता कांडपाल ने यही सवाल इंडियन एक्सप्रेस के पूर्व सीनियर एसोसिएट एडिटर वीरेंद्र कुमार के सामने रखा।
जब एक पार्टी के सारे MLA इलेक्शन जीतने के बाद वहाँ पे जाएं, माथा टेकने जाएं, तो जमीनी स्तर पे चाहे अधिकारी हैं या जो भी लोग हैं उनको एक मैसेज चला जाता है कि भाई ये तो सरकार के लोग हैं, इनके साथ जो है ना कुछ करने की जरूरत नहीं है।
राम रहीम और ये जो डेरा का जो कल्ट है पूरा, वो इतना प्रभावशाली क्यों हो चुका है?
डेरे जो थे ये अकाली दल जो है वो शुरू से जाट सिखों का उसमें डोमिनेशन होता रहा है, और ज्यादातर डेरे जो हैं इनमें इनके फॉलोअर जो है वो या तो बैकवर्ड हैं या दलित हैं, तो उनको एक तरह से ही अपने आप को असर्ट करने का, अपनी आइडेंटिटी असर्ट करने का ये डेरे मौका देते हैं। और क्योंकि ये बैकवर्ड और दलित इन डेरों के पीछे हैं, तो इस कारण राजनीतिक लोग भी उनके पास जाते हैं सपोर्ट के, इलेक्शन के टाइम में ये वोट कैप्टिव वोट बैंक उनके लिए बन जाता है। तो इस कारण से अब ये जो डेरा है, इस डेरे का जो है ये पहले कांग्रेस के सपोर्टर हुआ करते थे।
तो इससे पहले जब जाट आरक्षण आंदोलन हुआ था तब भी जो है सरकार पर बहुत छींटाकशी हुई थी और बहुत हरियाणा में तबाही हुई थी, जानी गई थी। और इसके अलावा एक और मामला था रामपाल जो है,
रामपाल का बरवाला।
तो क्यों लगातार हरियाणा की सरकार क्या कानून व्यवस्था पर पूरी तरह फेल मानी जाए?
देखिए तीनों ही केस के अंदर कुछ चीजें कॉमन है। तीनों ही केस के अंदर सरकार ने भीड़ इकट्ठी होने दी। जब जाटों का जो आंदोलन था उससे पहले अगर जाट नेताओं के आप भाषण सुने तो मैं साफ कर दिया था कि भाई हम दिल्ली का पानी रोक देंगे, दिल्ली में दूध पहुंचाना बंद कर देंगे, सब्जियों की सप्लाई बंद कर देंगे। लेकिन किसी कारण से, चाहे राजनीतिक कारण कह लो, चाहे वो उनकी अकर्मण्यता कह लो सरकार की, वो यू नो सख्ती से इनके साथ कभी भी पेश नहीं आई। इस केस के अंदर भी जिस तरीके से लोग इकट्ठे हो रहे थे, कहते थे जी हम गुरुजी के दर्शन करने आ रहे हैं। अब गुरुजी के दर्शन करने के लिए आपको पूरे पंजाब हरियाणा से यहाँ आने की जरूरत है ना, पंचकूला में। आप सिरसा में जाइए, हाईकोर्ट में जब एक केस लगा हुआ था, हाईकोर्ट में एक वकील हैं, उन्होंने एक पिटीशन फाइल करी कि सरकार पंचकूला के अंदर व्यवस्था बनाने में असफल रही है। तो कोर्ट ने पूछा कि आपने क्या किया है, तो वहां पे इन्होंने एक ऑर्डर निकाला 144 के अंदर, सेक्शन 144 के अंदर, कहते हैं हमने प्रोहिबिटरी ऑर्डर लगा दिए। जब उस ऑर्डर को पढ़ा गया तो उसमें लिखा था कि शस्त्र ले जाने पर पाबंदी है, लोगों के इकट्ठे होने पर कोई पाबंदी नहीं है। और जब कोर्ट ने पूछा कि भाई आपने कैसा किया है, क्या है, तो उन्होंने कहा जी तो क्लरिकल मिस्टेक हो गई है। तो कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दी कि देयर सीम्स टू बी टोटल कोल्यूजन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द डेरा।
ये थे इंडियन एक्सप्रेस के पूर्व सीनियर एसोसिएट एडिटर वीरेंद्र कुमार। और अब चलते हैं चंडीगढ़ में मौजूद हमारे साथी फैसल मोहम्मद अली के पास, जो वहां से छपने वाले तमाम अखबारों को खंगालने के बाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फैसल, इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहते हैं अखबार?
देखिए अमरीश, अलग अलग अखबारों में पहले तादाद की बात करें तो दैनिक जागरण कह रहा है कि 32 लोग मारे गए हैं। दैनिक सवेरा यहाँ का एक लोकल अखबार है, उसके मुताबिक 32 लोग, HT में 30 और इंडियन एक्सप्रेस में 28। यानी कि ये तादाद को लेकर अभी भी कंफ्यूजन है, अलग अलग तादाद आ रही है नंबर्स। इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो वो लिखता है कि स्टेट बर्न्स फॉर ए रेप कन्विक्ट, यानी कि एक जो बलात्कार का दोषी है उसके लिए पूरा राज्य जो है, एक सूबा जो है, एक तरह से जल रहा है। साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस ने एक तस्वीर दी है डेरा चीफ राम रहीम की, वो हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं जहां से उनको रोहतक जेल ले जाया गया है। साथ साथ एक रिपोर्ट है इसमें वीरेंद्र भाटिया की, जो कि स्पेशल रिपोर्ट है कि 7 दिन से जो है वो भीड़ जो है जमा हो रही थी। हाईकोर्ट ने वार्निंग दिया था लेकिन खट्टर सरकार ने किसी भी तरह का जो वार्निंग सिग्नल्स था, जो वाइटल साइंस था, उनको पूरी तरह से जो है उन्होंने इग्नोर कर दिया था। इसमें यहाँ तक लिखा गया है कि चीफ ने जो है जब उनको डांट लगाई है तब जाकर के इस पर थोड़ी कार्रवाई हुई है। और आज जो वायलेंस जो कल जो हुआ है वो कोई अचानक से नहीं हो गया, ये इसके लिए पूरी तरह से तैयारी है ये हो रही थी। साथ साथ इसमें ही एक अदालत ने कहा कि कोई भी हथियार अपनाओ लेकिन लोगों को रोकना है, लेकिन इसके बाद भी नहीं रोक पाया। जागरण कहता है कि हरियाणा में ताक पर लोकतंत्र, एक ऊपर में एडिटोरियल एक लिखा हुआ है जिसमें टिप्पणी है प्रशांत मिश्र की। उन्होंने लिखा है कि प्रशासन की निष्क्रियता के कारण 4 राज्यों में फैली हिंसा, पुराने अनुभवों से भी कुछ नहीं सीख पाए हैं मनोहर खट्टरलाल। और एक बस ये बताना चाहूंगा अमरीश कि इसमें जो यहाँ का सबसे पुराना अखबार है, इन्होंने वही बात कही है कि हरियाणा की जो अनार्की थी वो एक तरह से फिर से जो है सामने नजर आई है।
जी, हरियाणा की अनार्की एक बार फिर से सरफेस पे आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल मोहम्मद अली अखबारों की समीक्षा के लिए।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
बिहार में इस साल आई बाढ़ से ने भारी तबाही मचाई है। राज्य का लगभग आधा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित हुआ है। पानी घट रहा है लेकिन तबाही के गहरे निशान छोड़ गया है। हालांकि मुजफ्फरनगर, सीतामढ़ी, अररिया, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सारण इलाकों में बाढ़ का पानी अभी भी जमा है और अब तक 400 से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। पश्चिमी चंपारण में पानी उतर चुका है लेकिन चारों तरफ तबाही के निशान हैं। राहत और पुनर्वास की कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। हमारे सहयोगी रवि प्रकाश ने रक्सौल से वाल्मीकि नगर तक की कठिन यात्रा कर ये रिपोर्ट भेजी है।
घर भी बहुत जो है जो टाट फूस का घर है बहुत सारे गिर गए हैं। अब इसके बाद आप देख लीजिए अभी कोई राहत का वितरण उतरण यहाँ नहीं हुआ। तकरीबन मेरे गांव में जो पानी आया बाढ़ का तकरीबन समझिए 12-13 दिन रह गए।
यह आवाज इजहार हुसैन की थी। वे पूर्वी चंपारण के भेलाही के रहने वाले हैं। इनसे मेरी मुलाकात घोड़ासन नहर के भेलाही चौक पर हुई। वे यहाँ खैनी की दुकान चलाते हैं। बाढ़ ने उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया है। उनके बगल में फलों की दुकान लगाने वाली नूरबानो निशा 70 साल की है। उनकी झोपड़ी बाढ़ में बह गई।
बाढ़ से ये भले सब क्षति भइल, सामान ना निकलल, अन्न पानी ना निकलल, सब वही में रह गइल।
रक्सौल से नरकटियागंज जाने के रास्ते में घोड़ासन नहर दर्जनों जगहों पर टूट चुकी है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, नहर में कटाव है। रक्सौल से सिकटा के बीच खेतों में धान की मर चुकी फसल दिखती है। पानी घटा तो लोग घरों से निकले, अब सिर्फ तबाही का नजारा है। सिकटा नहर चौक से नरकटियागंज जाने के रास्ते में भी सड़कें इस कदर टूटी हैं कि ड्राइवर हर 500 मीटर के बाद गाड़ी से उतरने को कहता है। फिर वह जान जोखिम में डालकर गाड़ी पार कराता है और हम फिर उसमें सवार हो जाते हैं। यह दूरी सिर्फ 45 किलोमीटर की है, लेकिन हमें इसे तय करने में 4 घंटे लग गए। सिकटा में मेरी मुलाकात हुई भेड़ी हरवा के हसमीदीन मिस्त्री से।
बाढ़ बहुत ज्यादा आया, नहर दोनों तरफ टूटा। उसके बाद हम लोग बाल बाल बच गए खुदा के कहर से, और खाने पीने का सामान दह गया, खेती बाड़ी सब दह गया।
मुनिलाल प्रसाद आनंदीगंज भरवरिया गाँव के है। सिकटा और नरकटियागंज के बीच उनसे एक चाय की दुकान पर मुलाकात हुई।
बहुत खराब पोजिशन था, समझे जी। पानी अभी तो हट गया है, लेकिन 13-14 रोज पानी रह गया। फसल पूरा बर्बाद हो गया है, घर जो है सो सब गिर गया है, ढह गया है। बच्चे पर असर पड़ रहा है और शहर पे भी असर पड़ रहा है, सबको बीमारी हो रहा है।
यह कहानी पश्चिमी चंपारण जिले की है। नरकटियागंज से वाल्मीकि नगर जाने का रास्ता भी बुरी तरह टूट चुका है। गिरे हुए पेड़, बिजली की पोल इस भ्रम में डाल देते हैं कि कहीं यहाँ भूकंप तो नहीं आया था। रास्ते में हरबोड़ा, बड़गेर, मसान, बेला, हरा जैसी आधी दर्जन नेपाली नदियां मिलती हैं। इनके पानी में तेज रफ्तार है, मानो बहा ले जाएंगी। गंडक नदी में आई बाढ़ का बड़ा कारण ये नदियां हैं जो नेपाल में हिमालय और दूसरे पहाड़ों से निकलती हैं। शाम ढल चुकी है, लोगों ने चूल्हा जला लिया है, बगल में घूर भी जला है ताकि उसके धुएं से पालतू जानवरों और बच्चों को मच्छरों के काटने से बचाया जा सके। चंपारण में जिंदगी ऐसे ही चल रही है। रेडियो प्रो के सज्जन शारदा सिन्हा का गाना बजा रहे हैं। रवि प्रकाश, PBC के लिए नरकटियागंज, पश्चिमी चंपारण में।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
भारत और पाकिस्तान के बंटवारे ने रातों रात लाखों लोगों को अपनी जड़ों से उखाड़कर एक नए मुल्क में ला खड़ा किया था। डेरा इस्माइल खां उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में पड़ता है, जहां विभाजन से पहले बहुत से हिंदू परिवार रहते थे। देश बटा तो उनमें से कई हिंदू परिवारों को भारत आना पड़ा, और वो अपने साथ वहां का रहन सहन और संस्कृति भी ले आए, और उन्होंने उसे सहेज कर रखा है। सुनिए सुमरनप्रीत कौर की ये खास रिपोर्ट।
डेरा इस्माइल खान, बंटवारे से पहले यहाँ बहुत से हिंदू परिवार रहते थे। इनके निशान आज भी यहाँ दिखते हैं। इनके घर सलामत हैं और आज भी इनके नाम उन घरों के बाहर लिखे हुए दिखते हैं। बंटवारे के वक्त बहुत से हिंदू परिवार डेरा इस्माइल खान में अपने घर छोड़ भारत आए। अपने साथ वो डेरा का रहन सहन, भाषा और संस्कृति भी लाए। जहां उनके घर के निशान वहां पाकिस्तान में अभी भी सलामत हैं, पाकिस्तान का डेरा इस्माइल खान भी कुछ भारतीय लोगों के दिलों में सलामत है। दिल्ली के पास गुड़गांव में रहने वाले प्रेम पिपलानी बंटवारे के वक्त वहीं से आए थे। वो आज भी डेरा की भाषा सरायकी में बात करते हैं।
जंदा जंदा जिथा मौका लगे या कोई वाकफ आई उठा लगे। जलंधर मैं 50 साल रही और इतना गुड़गांव 26 साल में कुथी गए।
यादें टटोलते हुए 1999 में प्रेम पिपलानी पाकिस्तान गए। वो करीब 57 साल बाद अपने घर को ढूंढने गए। जब अपना घर देखा तो भावुक हो गए।
जैसे ही मैंने कदम रखा, वही हवा, खुशबू मिट्टी की, और वही फीलिंग जो मैं 1942 में मुझे हुई थी, कुछ नहीं बदला। जो हिंदू या सिखों के घर हैं उनके नेम प्लेट्स वही लगे हुए हैं। सबसे अच्छा तो तब लगता था जब मैं अपना घर देखता था। वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल खुल गया।
जहां प्रेम पिपलानी हैरान हुए अपना घर देखकर, वहीं वहां के निवासियों को उन्होंने भी हैरान कर दिया। डेरा इस्माइल खान के रहने वाले बुलंद इकबाल ने बताया,
वो जब लोगों को ये पता चलता है कि ये हिंदुस्तान से आए हैं और एक हिंदू हैं, हिंदू डेरेवाल हैं, और वो जो उनकी जबान से अपनी माँ बोली और अपनी मादरी जबान सराकी सुनते हैं, तो उन्हें और भी हैरानी होती है कि ये सारे लोग हम जैसे ही थे।
प्रेम की तरह और भी कुछ लोग पाकिस्तान से आए और भारत को अपना घर बनाया। इनमें से बहुत से परिवार गुड़गांव में ही रहते हैं। कभी कभी ये डेरा वाले मिलकर पुरानी यादें ताजा करते हैं। सुमिरन प्रीत कौर, बीबीसी दिल्ली।
बीबीसी इंडिया बोल। निजता की रक्षा कितनी जरूरी, सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया है, लेकिन आधार कार्ड के लिए पुतलियों की फोटो और उंगलियों के निशान चाहिए। आपके लिए निजता का अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर आधार कार्ड? इस बार बीबीसी इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 26 अगस्त शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811 7000 और 1811027001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
अब थोड़ी फिल्मों की बातें कर लेते हैं। इस हफ्ते एक फिल्म रिलीज हुई है, अ जेंटलमैन। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जैकलिन फर्नांडिस की यह फिल्म कैसी है, अगर जानना चाहते हैं तो सुनिए फिल्म समीक्षक अर्णव बैनर्जी को, और उनसे बात कर रही हैं सुमिरन प्रीत कौर।
सिद्धार्थ मल्होत्रा और जैकलिन फर्नांडिस की अ जेंटलमैन सुंदर, सुशील, रिस्की, कितनी सुशील लगी आपको?
बहुत सुशील लड़के बने हैं सिद्धार्थ, और उनका एक दूसरा रूप भी है जो बाद में देखने में आता है। फिल्म कुछ कुछ कॉमिक है, कुछ कुछ फन है और थ्रिल्स है, और उसके बाद थोड़ा सा सस्पेंस भी है, वो मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ, ऐसा है कि कई सारे आपको रूप देखने को मिलेंगे एक ही सिद्धार्थ मल्होत्रा के। तो फिल्म में एक कहानी होनी चाहिए, कहानी बहुत ज़रूरी होती है, या कहानी नहीं भी हो तो कुछ इस तरह का एक प्लॉट रचना चाहिए जिससे कि कहानी आगे बढ़े या दर्शकों को मज़ा आए। उसके लिए आपको बहुत अच्छे राइटर्स चाहिए, जो मैं बार बार कहता हूँ कि राइटर्स की कमी की वजह से कई बार फिल्म अच्छी बनते बनते रह जाती है। जेंटलमैन के साथ भी वही हुआ है। सिद्धार्थ मल्होत्रा जब अच्छे बने हैं तो अच्छे वो लगते हैं, और अच्छा उन्होंने काम भी किया है, लेकिन उनको बुरा बनने के लिए बहुत बुरा बनना पड़ेगा। जैसे शाहरुख ने हमने देखा है उनको नेगेटिव किरदार में, या कभी कभी अक्षय और एक्टर्स को भी देखा है, कहीं ना कहीं वो बच्चे लगते हैं, और जो नेगेटिव कई जगह करने की कोशिश की है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगे हैं।
और अब सुनिए खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं इंदु पांडे। बैडमिंटन की बात करें तो किदांबी श्रीकांत का विश्व चैंपियन में भारत के लिए पदक जीतने का सपना। पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल में कोरिया के खिलाड़ी सोनवान हो के हाथों सीधे गेम में हारने के साथ ही टूट गया। और क्रिकेट में श्रीलंका को एक और झटका लगा है। भारत के खिलाफ लगातार दूसरे वनडे में हार के बाद धीमी ओवर रेट की वजह से कप्तान उपुल थरंगा पर 2 मैचों का बैन लगा दिया गया है। थरंगा पर बैन के बाद श्रीलंकाई टीम ने दिनेश चांदीमल और लाहिरू थिरिमाने को वापस बुलाया है। कल से जर्मनी के शहर हुम्बर्ग में बॉक्सिंग चैंपियनशिप शुरू हो गई है, जहां पे भारतीय मुक्केबाजों की राह इस 19वीं विश्व चैंपियनशिप में आसान नहीं होगी, क्योंकि उन्हें काफी कठिन ड्रॉ मिले हैं। विकास को मिडलवेट वर्ग में 3री वरीयता मिली है, तो शिवा को लाइटवेट में 5वीं वरीयता दी गई है, जबकि सुमित सांगवान को 6री वरीयता मिली है। ये सभी प्री क्वार्टर फाइनल में रिंग में उतरेंगे। इस चैंपियनशिप में भारत के 8 मुक्केबाज मुकाबले में उतरे हैं, और ये विश्व चैंपियनशिप ओलंपिक के बाद सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है। 9 दिनों तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में दुनिया के 280 बेहतरीन बॉक्सर हिस्सा लेंगे। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बाबा गुरमीत राम रहीम को बलात्कार का दोषी करार दिए जाने के बाद हुई हिंसा में 29 लोग मारे गए हैं और दर्जनों घायल हुए हैं। गुरमीत राम रहीम को रोहतक की जेल ले जाया गया है, अब उन्हें 28 अगस्त को अदालत में पेश किया जाएगा। तीव्र समुद्री चक्रवात हार्वी करीब 215 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अमरीका के टेक्सिस प्रांत की ओर बढ़ रहा है। अमरीकी सेना का कहना है कि उत्तर कोरिया ने कम दूरी की 3 मिसाइलें लॉन्च की हैं। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार, भारत की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया देवाशीष कुमार ने और फेसबुक पर इसे आप तक पहुंचाया विकास त्रिवेदी ने। तो अब अमरीश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।